Srimad Bhagavat, Pratham Skand Adhyay 3, Shlok Sankhya 41. Is that right? Ek Tin Ektalis. Sabke pass phone? Nahi hai. Kya, aap sab manav hai? Kya? Manav ka matlab jinke pass mobile hai. Main aap manav hoon. Sabhya manav ka matlab phone hone chahiye. Sahi hai jo main bolta hoon. Aisa log sochte hain ki sabhya hone ke liye phone zaruri. हम वैसे ही नहीं मानते हैं, लेकिन ये सब बच्चे के पास नहीं है. बच्चे वो मुनि बन गया हो अभी. क्या नाम? नहीं, अंगिरा मुनि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Srimad Bhagavatam anuvad Sanskrit se angrezi aur tatparya Sri Srimad AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke dwara. Skand Ek Adhyay 3 Shlok 41. Tat Idam Grahayam Asa Sutam Atmavatam Varam Sarava Veda Itihasanam Saram Saram Samudhritam Tadidam Grahayamasa Sutam Atmavatam Varam Sarva Vedeti Hasanam Saram Saram Samudhritam Tadidam Grahayamasa Sutam Atmavatam Varam Sarva Vete Tihasanam Saram Saram Samudhritam
Tadidam Grahayamasa
Sutam Atmavatam Varam Sarva Vete Tihasanam
Saram
Saram Samudhritam
Tadidam Grahayamasa
Sutam Atmavatam Varam Sarva Vede Tihasanam
Saram Saram Samudhritam
Saram
Tadidam grahyamasa.
Tadidam grahyamasa.
Sutam
atma vatam varam.
Sarva
vede tihasanam.
Saram
saram samudritam. Tadidam grahayamasa. Sutam atma vatam varam.
Sarva
vede tihasanam. Saram saram udahritam.
Devyo.
Tadidam grahayamasa. Sutamatma vatam varam. Sarva vede tihasanam. Saram saram samudritam. Tadidam grahayamasa. Sutamatma vatam varam. Sarva vede tihasanam. Saram saram samudritam. Tadidam grahayamasa. Sutam atma vatambaram. Sarva vede tihasanam. Saram saram samudritam. Tadidam grahayamasa. Sutam atma vatambaram. Sarva vede tihasanam. Saram saram samudritam.
Tat us matlab kya kya vishay tat ya us ka matlab ye shlok ka vishay vishay kya hai Srimad Bhagavatam
idam
ya grahayam asa Svikakaraya Sutam Unke Putrako Atmavatam Swarup Sidko Swarup Sidko Varam Atyant Adaraniya Sarava Samast Veda, Vedic Sahitya, Jnana Granta, Itihasanam, Samast Itihason Ka, Saram, Sara,
Nishkarsh.
Saram
sar
samudhritam nikala hua Srila Vyasadev ne samast vaidik shastrong tata brahmand ke itihason ka sar nikalkar isse apne putra ko pradan kiya jo Swarup Siddho me Atyant Samananiya He. Tatparya.
Manushya Sansar ke itihas ko केवल समयस्य अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मान्य है और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं। अतः अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, नहीं वे काल्पनिक हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतः हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रील व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसीलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता श्री व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानव ज्ञान के क्षीर सागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम की है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से श्रीमद् भागवतम सुना जाए, जो जनसामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्री शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसीलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्री शुकदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तब यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो श्रीमद् भागवतम का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य अपने भगवान श्री कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनी यानी कि सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीम् राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशम प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विषय है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवत का महत्व का वर्णन है और किस प्रकार हम यही कलयुग में श्रीमद् भागवत प्राप्त किए हैं। श्रीमद् भागवत सनातन है क्योंकि श्रीमद् भागवतम अर्थ क्या है? श्रीमद् ऐश्वर्यमय, ऐश्वर्यमय ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञानवैराग्ययश्चैव सन्नं भग इति अंगेन। भगवान के असंख्य गुण है जिनमें परार्ष मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं कि भगवान के छह मुख्य लक्षण है। परिपूर्ण रूप से भगवान ऐश्वर्यमय है, परिपूर्ण रूप से भगवान वीर्यवान है, शक्तिमान है, संपूर्ण रूप से भगवान की कीर्ति है और सौंदर्य है और ज्ञान है और वैराग्य। और श्रीमद् भागवतम उसी प्रकार भगवान से अभिन्न है और ये सब गुण श्रीमद् भागवत में है क्योंकि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में भगवान भागवतम, भागवतम का मतलब जो भगवान से संबंधित है। दो प्रकार के भागवत है, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि दो प्रकार के भागवत है, श्रीमद् भागवत शास्त्र और दूसरा है भक्त भक्ति रस पात्र उत्तम भक्त, हिंदी में भगत कहते हैं और पूरा शब्द संस्कृत में भागवत है। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, बड़ा है भागवत शास्त्र अर्थात भागवत शास्त्र का महत्व सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि भगवान से अभिन्न है। और भागवत भक्त, भागवत जो है कैसे भक्त होते हैं? भागवत शास्त्र का पाठ करने से, भागवत शास्त्र की सब वाणी साक्षात्कार करने से, हृदयंगम करने से और दूसरों को भी सिखाने से एक भक्त भागवत कहलाता है। भागवत भक्त भागवत होते हैं क्योंकि भगवान और भागवत से संबंधित है। और दूसरा दृष्टिकोण से भागवत भक्त भागवत शास्त्र भागवत से और भी बड़ा है, क्योंकि भागवत भक्त भागवत की दया से हम शास्त्र भागवत के सब गुह्य अर्थ समझ सकते हैं। एक दृष्टिकोण से भागवत शास्त्र ऊपर है, दूसरे दृष्टिकोण से भक्त भागवत ऊपर है, और हमारी स्थिति से दोनों पूजा है, दोनों महान है। फिर भी भक्त भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मद भक्त पूजा व्याधिका, मेरी पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण क्या है, मेरे भक्त की पूजा करना। और भक्तजन क्या कहते हैं, कृष्ण की पूजा करना। जो वास्तविक भगवत भक्त है, जो भक्त कहते हैं श्री कृष्ण की पूजा करना, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त की पूजा करना। भक्त कैसे इतना महान है, क्योंकि उनका संबंध है श्री कृष्ण के साथ। ऐसे कहना मैं महाभागवत हूँ, मैं भक्त हूँ, तो कैसे खाली बोलने से नहीं होते हैं। जैसे भगवान के लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि वे भगवान है, तो इसी प्रकार भक्तजन के लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि वे भक्त है। आधुनिक युग में, कलि युग में एक आधुनिक प्रथा है कि किसी भी व्यक्ति जनता के बीच में आकर बोल सकते हैं मैं भगवान हूँ, और बहुत से लोग उसके पीछे जाते हैं और विश्वास करते हैं खाली कहने से मैं भगवान हूँ, और कुछ जादू दिखाते हैं, और ऐसे लोग ओह भगवान है विश्वास करते हैं। परंतु वास्तविक भगवान कैसे, भगवान कैसे हम पहचान कर सकते हैं भगवान भगवान है, कौन है भगवान, कैसे समझना चाहिए। भागवत शास्त्र में से वेद का मतलब क्या, ज्ञान। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वेद, और परिभाषा वेद शब्द की परिभाषा वैदिक साहित्य अथवा ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ। स्कूल में भी ज्ञान ग्रंथ मिलती है, अंक के मैथमेटिक्स के बारे में, 2 + 2 = 4, ज्ञान है, ज्ञान है, वही ज्ञान है। और साइंस के बारे में पानी का मतलब H2O, और हैवी वाटर क्या है, H2O2,
D2O,
जब मैं स्कूल जाता था H2O2, थोड़ा चेंज हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि मानवी बुद्धि से वो सब ज्ञान जो प्राप्त होते हैं वो वेद ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेद का मतलब वास्तविक ज्ञान, जो जो सच था और जो सच है तो सच रहेंगे, सत्य ज्ञान वेद शास्त्र में है। और श्रीमद् भागवत क्या है, सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं समुद्धृतम्। वेद शास्त्र में बहुत शाखाएं हैं, बहुत, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत सारे वस्तु है, बहुत सारे विषय है, और सब के बारे में ज्ञान है वेद शास्त्र में, और आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान है, मानवी बुद्धि, मानवी आविष्कार करने का प्रयास है। हम भौतिक जगत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, परंतु वो जगत जो भौतिक दृष्टि, इंद्रियों की दृष्टि के परे है, वो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत, और उसके बारे में वेद शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बहुत शाखाएं है वेद शास्त्र में, और वेद शास्त्र का सारांश क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक जगत के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त होते हैं वेद उपवेद से, जैसे आयुर्वेद, आज तक आयुर्वेद का अभ्यास हो रहा है भारत में और आजकल भारत के बाहर भी, तो वो एक प्रकार का ज्ञान है, परंतु वो भौतिक जगत के बारे में है, उपयोगी ज्ञान है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, जिससे रोग से हम मुक्त हो सकते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान है। धनुर्वेद है, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ये सब वेद शास्त्र के अलग अलग अंश है, परंतु सर्वोत्तम ज्ञान जो शास्त्र में है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। इसके बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान विद्यानम, आध्यात्मिक कि सभी प्रकार की विद्या में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो पहला स्तर समझना चाहिए कि आत्मा सनातन है, और सब कुछ जो भौतिक जगत में है वो सब अस्थाई है, और स्थाई है आत्मा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा ये है, तेहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर का विकार होते हैं, आज का शिशु कल का शव, और बीच में शिशु, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद देहावस्था, मृतावस्था। परंतु अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्, जो सर्वव्यापी है शरीर में वो आत्मा है, और वो अविनाशी है। शरीर नाशवान है, शरीर का मृत्यु होगा, परंतु आत्मा जीवात्मा सनातन है। ये ज्ञान आध्यात्मिक बोलते हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में है, और वैदिक शास्त्र का सार यही ज्ञान है, आत्मा के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान। और आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए वेद शास्त्र में भिन्न भिन्न पथ प्रदर्शित है। योग, योग का मतलब केवल ऐसे आसन व्यायाम ऐसे नहीं, पतंजलि योग का लक्ष्य है। वो चेतना बंद करना, चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति को बंद करना, जो गीता से हम समझते हैं वो संभव नहीं है, लेकिन भौतिक आकर्षणों से आकर्षित होना वो चित्त की वृत्ति को बंद करना पतंजलि योग का लक्ष्य है। और पतंजलि भी ईश्वर प्रणिधान के बारे में, ईश्वर के बारे में लिखते हैं योग सूत्रों में, परंतु ईश्वर कौन है, हमारा क्या संबंध है ईश्वर के साथ, उसके बारे में चर्चा नहीं है पतंजलि सूत्रों में। और भाष्यकार जो कहीं भाष्यकार है योग सूत्रों के ऊपर और ईश्वर के बारे में कुछ लिखते हैं, लेकिन योग सूत्रों में ईश्वर के बारे में लेख है, परंतु ईश्वर के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। तो योग भी है और विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान का सार है वेदांत सूत्रों, ब्रह्म सूत्रों, ब्रह्म के बारे में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी सब कर्मकांड, ज्ञानकांड, वो सब अनुशीलन करने के पश्चात अभी हमें ब्रह्म के बारे में, परम ब्रह्म, परम अध्यात्म के बारे में पूछना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। वो ब्रह्म क्या है, जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आते हैं, जिनमें सब कुछ रहते हैं और जिनमें सब कुछ प्रवेश करेगा वो ब्रह्म है। परंतु वो ब्रह्म क्या है, वेदांत सूत्रों में एकदम स्पष्ट वर्णन नहीं है। यदि हमारी बुद्धि स्पष्ट है, हम समझ सकते हैं कि वैदिश्य सर्वैरहम एव वेद्यः, सब वेद शास्त्र में हर एक मंत्र, हर एक वचन केवल भगवान हरि, भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं। परंतु सब लोग जो वेद पाठ करते हैं, ही स्पष्ट मर्म, सार मर्म नहीं समझते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का केंद्र बिंदु, ज्ञान का चरम लक्ष्य क्या है, कृष्ण ही है। और वेदांत सूत्र में भी वो वर्णन है, परंतु अधिकांश वेदांती, जो वेदांती कहलाते हैं, अधिकांश विचार करते हैं कि परम ब्रह्म निर्विशेष है। शंकराचार्य का सिद्धांत या मत है कि अद्वैत, केवल अद्वैत, हम सदैव सर्वत्र देखते हैं द्वैत, मैं हूँ आप है, मैं आप नहीं हूँ। यदि आप भूखी है और आपके सामने में विशाल प्लेट का ककड़ी, रोटी, रोटली इत्यादि सब्जी शाक संतुष्ट होगा, तुम और मैं एक ही है, मैं भूखी हूं अभी तक, स्पर्श है कि सब कुछ एक ही नहीं है, परंतु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है कि ये मायिक जगत है और यहाँ पर हम सर्वत्र सदैव द्वैत देखते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ब्रह्म आध्यात्मिक स्थिति में जो माया के परे है वो अद्वैत है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर द्वैत है और सब मायक है। तो अमाया का मतलब द्वैत रहित अर्थात अद्वैत। अच्छा विचार है, न्याय के अनुसार यहाँ पर माया है और यहाँ पर द्वैत भेद, हम भेद देखते हैं। तो जहाँ पर माया नहीं है वहाँ पर भेद नहीं रहेगा। एक संशय है, तो यदि अद्वैत है अमाया का वास्तव में और माया है यहाँ पर, तो अद्वैत है वहाँ और यहाँ पर माया है और माया अद्वैत से अलग है, और यदि कुछ भी माया से अद्वैत से भिन्न होते हैं तो द्वैत होते हैं, दो वस्तु है। वैदिक शब्दों में बहुत शब्द है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, और ओम शब्द का अर्थ है पूर्णम का शब्द अर्थ है, सब सब शब्द का एक ही अर्थ नहीं है, भेद है, द्वैत है। उसका मतलब क्या है, वैद शास्त्र मायक है क्या? लेकिन वैदिक शास्त्र में से हमें सिद्धि मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वेद शास्त्र का निदर्शन के अनुसार हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। केवल अद्वैत दर्शन में बहुत बहुत त्रुटि है। जैसे ठीक है, अभी मैं मुक्त हूँ, ब्रह्मलीन हूँ, लेकिन मैं और तुम में अंतर नहीं है, भेद नहीं है। तो यदि मैं मुक्त हूँ तो तुम क्यों मुक्त नहीं हो, यदि सब कुछ एक है? बहुत बहुत त्रुटि है शंकराचार्य का केवलाद्वैत वाद में, और वैष्णवाचार्यों शंकराचार्य का मायिक सिद्धांत को बहुत बहुत खंडन किया है ऐसे। हरे कृष्ण, मायावाद का खंडन हरे कृष्ण में से होता है। जैसा आपका प्राण से प्रिय मोबाइल बंद कीजिए और बाद में हरे कृष्ण आप बजाए, बाद में अभी शास्त्र का विचार, शास्त्र की चर्चा हो रही है, और शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत क्या है, हरे कृष्ण। परंतु हमें पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए हमें शास्त्र की चर्चा सुननी चाहिए। वेदांत सूत्र शास्त्र का सार है। केवल केवल अद्वैतवादी शंकराचार्य की शारीरिक भाषा नहीं है, उसके अलावा श्री रामानुज की श्री भाषा है। वैष्णवाचार्यों में सर्वप्रथम यही कलयुग में श्री रामानुजाचार्य ने वो केवल अद्वैतवाद का पूरा खंडन किया है, और श्री रामानुज संप्रदाय में बहुत आचार्य श्री रामानुज का आदर्श के अनुसार वेदांत से परम सत्य स्थापित किए। परम सत्य भगवान विष्णु है और विशेषकर श्री मध्वाचार्य रामानुजाचार्य ग्रहण किया कि अद्वैत है, क्योंकि शास्त्र में भेद अभेद वाक्य है और भेद वाक्य भी है। एकम अद्वितीय वो अभेद वाक्य है और तमीश्वरानं परमं महेश्वरम, इस प्रकार भेद वाक्य भी है, बहुत है शास्त्र में। श्री रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत है रामानुज स्वीकार करते हैं कि अद्वैत है, लेकिन केवल अद्वैत नहीं है, विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत है परंतु अद्वैत परम सत्य विष्णु की वैशिष्ट्य भी है, विशेषता भी है। और श्री रामानुज के पश्चात श्री मध्वाचार्य द्वैतवाद स्थापन किए हैं। मध्वाचार्य हम ऐसे देखते हैं, मध्वाचार्य ऐसे बैठ रहे हैं दो अंगुल दिखा के द्वैत देखो, एक है या दो? दो है, पांच दस, और विश्व रूप में कितने हैं? अनेक अनेक, सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्र शीर्ष, इसका मतलब अनेक, इसका मतलब अद्वैत नहीं। परंतु भगवान अद्वैत भी है क्योंकि इनसे कुछ भिन्न नहीं है, उसी प्रकार अद्वैत है। अद्वैत और द्वैत दोनों सही है और इस प्रकार भिन्न भिन्न वैष्णव आचार्यों व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत रसानुभाव से द्वैतवाद अभिव्यक्त किए कि परम सत्य भगवान है, कृष्ण विष्णु विष्णु, सब वैष्णव आचार्य विष्णु को महान स्थापन किया, हरि सर्वोत्तम। मध्वाचार्य का मूल सूत्र हरि सर्वोत्तम, और चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है श्रीमद् भागवत से उद्धृत यही सिद्धांत, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही अध्याय में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वैदिक संस्कृति में सब मानते हैं, अद्वैतवादी द्वैतवादी सब मानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अष्टम अवतार है, दश अवतार में कृष्ण अष्टम है। परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं कि सब अन्य अवतार कृष्ण से आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब विष्णु रूप कृष्ण से व्यक्त होते हैं, सब विष्णु रूप सनातन है, फिर भी परम सत्य में ये अचिंत्य तत्व है कि सब विष्णु रूप सनातन होते हुए भी कृष्ण से प्रकाशित होते हैं। दीपाचर एव ही दशांतरम अभ्युपेत दीपायत एव वृत हेतु समान धर्मा, यस तादृगैव हि च विष्णु त्रया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान गोविंद को जो श्री ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय में मिलते हैं उसमें सब श्रीमद् भागवत के सिद्धांत संकलित है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है गोविंदम आदि पुरुषम अर्थात गोविंद कृष्णा भगवान विष्णु के स्रोत भी है और इस प्रकार दीपार्च दीप दीपार्ची दीप का आग एक दीप का आग अगर एक दीप का आग है तो उससे दूसरा दीप को भी प्रज्वलित कर सकते हैं और इस प्रकार एक दीप से बहुत दीप और आग व्यक्त हो सकते हैं परंतु एक ओरिजिनल है वो कृष्ण तो सब विष्णु के रूप कारणदाक्षाय विष्णु गर्भदाक्षाय विष्णु क्षीरदाक्षाय विष्णु मत्स्य कर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण और बलराम बुद्धदेव कल्कि और बहुत अवतारम ही असंख्य यही अध्याय में व्यासदेव लिखते हैं अवतारम ही असंख्ययम असंख्य अवतार है और सबके मूल आधार कृष्ण है और सब विष्णु रूप श्री कृष्ण से अभिन्न है भिन्न और अभिन्न और हम जो जीव है हम भी कृष्ण से अभिन्न है ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है परंतु हम अभिन्न कैसे आंशिक रूप से भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय परिपूर्ण है और हम जो जीव है हम सच्चिदानंदमय है परंतु हम बहुत छोटा है भगवान श्री कृष्ण महान है विभु और हम अनु जैसे हैं तो ये सब सिद्धांत विशेषकर श्रीमद् भागवत में प्रदर्शित है वेदांत सूत्र में सब आध्यात्मिक सिद्धांत जो परोक्ष रूप में संकलित है स्पष्ट एकदम स्पष्ट रूप में संकलित है श्रीमद् भागवतम में और विशेषकर श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध में श्री कृष्ण की माधुर्य और लीला का वर्णन है अन्य शास्त्रों में विष्णु विशेषकर विष्णु पुराण में भी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है परंतु व्रज की माधुरी विशेषकर श्रीमद् भागवत में प्रदर्शित है तो इसलिए सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं समुद्धृतम् समस्त वैदिक शास्त्र का सारांश आध्यात्मिक ज्ञान है जो विशेषकर वेदांत में प्रदर्शित है वेदांत का मतलब उपनिषदों और वेदांत सूत्रों में श्री व्यासदेव सब उपनिषदों का सिद्धांत प्रदर्शित किया है परंतु उपनिषद की भाषा गुह्य है और उपनिषद का अर्थ समझना कठिन यदि हम जानते हैं कठिन नहीं है, यदि हम नहीं जानते हैं तो उसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम मोहित हो सकते हैं। यदि हम जानते हैं, सब जानते हैं यह क्या है, वॉच वॉच है, लेकिन यदि हम ऐसा जगह जाएंगे जिसमें वॉच नहीं है, एक जंगल में जिसमें किसी के पास वॉच नहीं है, तो ये क्या है कोई नहीं बोल सकेगा। तो यदि हम देखते हैं तो ऐसे समय समय निर्धारण करने के लिए, समय दिखाने के लिए, समय क्या है, हाँ समय मतलब हम सूरज से हम देखते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार घड़ी से समय नहीं रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत सहज है समझना ये वॉच है और इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन पहले से यदि हमें जानकारी नहीं है, इसको देखने से हम क्या समझेंगे, क्या है क्या है, इसे क्या होते हैं, यदि हम नहीं समझते हैं कि समय का निर्धारण होते हैं और समय के अनुसार हम अलग अलग कार्य करते हैं, तो ऐसे सरल चीज देखने से हम मोहित होंगे। वेद शास्त्र विशेषकर वेदांत जो है एक सामान्य वर्ड से बहुत ज्ञान जो है वेद में बहुत बहुत जटिल है, और उसके बारे में यदि हम नहीं जानते, यदि हम वेद शास्त्र ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, तो हम कल्पना से या अपनी बुद्धि लगाने से कल्पना कर सकते हैं वेद शास्त्र का अर्थ क्या है। जैसे एक समन्वित गुरु थे जो अभी देहांता प्राप्ति की, जो कहते थे कि कृष्ण शब्द का अर्थ काला, काला का मतलब अंधकार अंधेरी, तो इसका मतलब है कि कृष्ण के बारे में कुछ भी समझना संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ काला है और अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देखते हैं। लेकिन सब शास्त्र का उद्देश्य है हमको भगवान कृष्ण के बारे में वो ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको देना। वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद्य का मतलब वो ज्ञान जिसका अर्जन करना चाहिए, और एक प्रशंसित स्वामी कहते हैं कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण का मतलब अंधकार। वो व्यक्ति जो ऐसा कहते हैं अज्ञान का अंधकार में है, और हम जो यहाँ पर उपस्थित है हम बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान उपस्थित है हमारे बीच श्रीमद् भागवत शास्त्र के रूप में और श्रीमद् भागवत का सार अर्थ एक महान भक्त भगवत हमको ज्ञात करते हैं हर एक श्लोक के साथ तात्पर्य है जिससे हम श्रीमद् भागवत की पाठ करने से और भी मोहित नहीं होंगे. जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि सामान्यतः लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब शास्त्र वेद पुराण शास्त्र वो सब कल्पना है. नहीं है. वेद का मतलब ज्ञान और श्रीमद् भागवत में सर्वोत्तम ज्ञान है. एक कल्पना नहीं है. कृष्णा भगवान भगवान है ऐसे समझना चाहिए. भगवान है और भगवान कृष्ण है. प्रमाण क्या है? प्रमाण है भगवत पुराण और प्रमाण है श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता श्रील प्रभुपाद जैसे जो केवल भागवत वाणी नहीं कहते हैं परंतु उसके अतिरिक्त उनका जीवन श्रीमद् भागवत की वाणी के ऊपर बनाते हैं और हमको वैसे ज्ञान देते हैं और हमको वैसे प्रशिक्षण देते हैं जिससे हम भी श्रीमद् भागवत की वाणी के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इस प्रकार हम जो अभी पतित मोहित अज्ञानी है हम श्रीमद् भागवत से अवगत हो सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है. मैं श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ और श्री कृष्ण की भक्ति करना मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है. तो इसलिए श्रीमद् भागवत का पाठ और चर्चा करनी चाहिए. तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण परो विमुचेन् नरः. श्रीमद् भागवत तत् ये श्लोक तदिदं ग्राहयामास. तत् तत् अर्थात यही प्रसंग में तत् शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवतम. तत् श्रृण्वन् हमें श्रवण करना चाहिए भागवत कथा नित्यं भागवत सेवय. प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने चाहिए. तत् श्रृण्वन् सुपठन् और ध्यान से हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए और विचारण परो बुद्धि लगाकर हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए. और उससे उससे क्या फायदा होते हैं? विमोचन न रहा, हम मुक्त होंगे, हम भौतिक संसार से मुक्त होंगे और विमुक्त. विमुक्त का मतलब हम भगवान के पास जाएंगे, हम भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे. जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन. भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति जो तत्वतः अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अर्थात कृष्ण की लीला कृष्ण का जन्म साधारण नहीं है, दिव्या है, वो व्यक्ति शरीर त्याग करने का समय संसार में वापस नहीं आते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। वो संसार चक्र से मुक्त होते हैं और भगवान के पास जाते हैं, भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म और लीला और सब तत्व श्री कृष्ण की लीला के बारे में विशेषकर श्रीमद् भागवत में संकलित है, इसलिए हमें तत्सुन्वन् सुपठन् विचारना पड़ो। हमें श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की वाणी हमारे जीवन के साथी बनना चाहिए और इस प्रकार हमारा जीवन व्यासदेव जैसे, सुखदेव जैसे। सूत का मतलब ये श्लोक में सूत, व्यास का सूत पुत्र, व्यास के पुत्र सुखदेव जैसे और सब महान महान आचार्यों के प्रदर्शित पथ पालन करने से हम भगवान के धाम जाएंगे और ये जीवन में भी हम विमुक्त रहेंगे, हम भौतिक दुख से प्रभावित नहीं होंगे। सर्वोत्तम लाभ होते हैं श्रीमद् भागवत से। तो इसलिए यदि आपका घर में श्रीमद् भागवत की पूरी सेट नहीं है तो जरूर आपको लेना है, और अगर आपका घर में है लेकिन आप पाठ नहीं करते, जरूर आप खाली आपको खाली रखना नहीं है, प्रतिदिन खुलना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कितने भक्त के घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट है, हाथ उठाए। जिनके घर में नहीं है अभी हाथ उठाए। ठीक है, आज आपका परम मंगल होगा। खाली हाथ में हम परिपूर्ण ज्ञान देंगे। एक बार और हाथ उठाए, हम फोटो खींचेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ खराब नहीं है। आपका परम मंगल होगा हाथ उठाने से। फिर हम आपको संपर्क करके भागवत के बारे में और भी कहेंगे और आपको अवसर देंगे श्रीमद् भागवत लेना। सबके घर में श्रीमद् भागवत रखना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आप गर्वी गुजराती हैं। भौतिक गर्व मायक है। आप श्रीमद् भागवत की चर्चा करने से वास्तविक गर्व लाभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।